आस्था की ओर देखते हुए वंशिका ने कहा, आस्था, आज शाम को तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा आने का बहुत मन था। अगर मैं डाक विला में गई तो ध्रुव को शक हो सकता है, क्योंकि आज ध्रुव और मैं प्रशांत गुरुजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके कोटेशन का इस्तेमाल करके अरमान भाई ने ऑर्डर दिया है कि एक बार फिर से एंटीडोट पर काम किया जाए। ये सुनकर राधिका ने वंशिका से कहा था, तुम फिक्र मत करो, तुम मत जाना, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। लेकिन तभी राधिका थोड़ा सा चौंकते हुए बोली थी, लेकिन आज तो वहां राजवीर जिंदल भी मौजूद होगा, राजवीर तुम्हें जानता है, और उसे अगर कुछ शक हो गया तो? तभी आस्था हंसते हुए बोली थी, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही सम्राट से बोल दिया था कि अगर वो मुझे और मेरे दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलाना चाहता है तो उस वक्त उसके घर में उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के सामने मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती। अभी धीरे धीरे ही तो मैं सम्राट से मिली हूँ, उसकी फैमिली से मिलने में मुझे वक्त लगेगा। ये सुनकर सम्राट ने कहा था कि वो वादा करता है कि अगर उसके अलावा घर में कोई और भी मिला तो वो उसी वक्त वहाँ से वापस जा सकती है। तभी मारिया बोली थी, जितना मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है, क्योंकि पहले से ही मुझे उसकी जानकारी लेने पर जोर दिया गया था, तो इतना मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। अगर उसने खुद कहा है तो वाकई उस दिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, और राजवीर को भी वो किसी न किसी बहाने से वहाँ से भेज देगा। जैसे ही आस्था ने ये कहा था, मारिया की आंखों में राहत महसूस हुई। तभी एंजल बोली थी, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया है, कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात को लेकर थोड़ा डर महसूस हो रहा था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब ऐसा लगने लगा है जैसे हमें उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है, और जो कुछ हम करना चाहते हैं वो अब हम आसानी से कर सकते हैं। सभी लेडीज एक दूसरे को अच्छी तरह से हिम्मत दे रही थीं। वहीं आहान थोड़ा सा चौंकते हुए और थोड़ी तेज आवाज में बोला था, अरे भाभी, आप सब लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो पकौड़े बनाने में? सारी भाभियाँ किचन में चली गई हैं, लेकिन अभी तक पकौड़े नहीं आए, कहीं आप सब लोग गप्पे तो हाँकने नहीं लग गई हो? ये सुनकर राधिका थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए बोली थी, अरे हाँ हाँ भैया, बस जस्ट बनने ही वाले हैं पकौड़े, डोंट वरी। ये बोलकर उसने जल्दी ही राधिका के हाथों नाश्ता लगवाना शुरू कर दिया था। इसी बीच दूसरी ओर रश्मि, जिसकी तबीयत अब थोड़ी सी बेहतर महसूस कर रही थी, धीमे धीमे चलते हुए सीधा जाकर हाल में बैठ गई थी। पकौड़ों की खुशबू से खुश होकर वो बोली थी, तेरे वाह आस्था, मेरा भी कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था। दो दिन से बुखार महसूस कर रही थी, बट हाँ शायद मौसम की वजह से वायरल था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा सा चटपटा पकौड़ा खाऊंगी तो और मज़ा आएगा। ये बोलकर वो पकौड़े खाने लगी थी। वहीं अचानक खाते खाते रश्मि की नज़र झूले पर जाकर ठहर गई थी। जैसे ही रश्मि ने ये देखा कि झूले में उस वक्त अंश नहीं है, वो थोड़ा सा चौंक गई। उसे लगा कि शायद दादाजी या फिर अभिमान जी की गोद में अंश होगा, क्योंकि वहीं साथ साथ मारिया का बेटा डेविड दोनों ही इस वक्त आकाश और सुमित के पास थे, क्योंकि सुमित को जानबूझकर आहान प्रिंसेस को अपने हाथों में थमा कर गया था। वो बोला था कि उसे नाश्ते की बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले वो खा कर आएगा, तब तक आप बच्चे संभालिए। और उस वक्त आकाश और सुमित ऊपर वाले पोर्शन में ही मौजूद थे, जो कि रश्मि ने देख लिए थे। वहीं दादी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी, दोनों बच्चों को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रश्मि ने एक बार फिर नीचे देखा कि पालने में अंश नहीं है, तो वो और ज़्यादा चौंक गई। तभी उसकी नज़र सीधा दादाजी पर गई, जो शायद अंश को लेकर वहीं आ रहे हों। लेकिन दादी जी के हाथों में भी अंश नहीं था। अब तो रश्मि को थोड़ी सी हैरानी होने लगी। उसने सोचा कि उसे सबसे अंश के बारे में पूछ लेना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि अगर इस तरह अचानक अंश के बारे में पूछेगी तो कहीं सब लोग घबरा ना जाएं। इसीलिए उसने धैर्य से काम लिया, थोड़ा उठी और चारों तरफ देखने लगी। सारी लड़कियां अभी भी किचन में मौजूद थीं, क्योंकि सबकी गप्पों की आवाज़ आ रही थी। अभिमान भी चुपचाप अपने दादाजी के पास बैठा हुआ था। तब रश्मि को लगा कि शायद अंश वसुंधरा के पास ही होगा, लेकिन ना तो वसुंधरा वहाँ थी और ना ही वीर वहाँ मौजूद था। अब तो रश्मि के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया, साथ ही साथ उसे घबराहट भी होने लगी। वो सोचने लगी कि कहीं कहीं किसी ने फिर से अंश को उठा तो नहीं लिया। वो खुद को रोक नहीं पाई और दादाजी के पास जाकर बोली थी, दादाजी, अंश आपके साथ नहीं है, मेरी तबीयत भी खराब थी, इसीलिए मैं कल से उसे देख नहीं पाई हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जानबूझकर रश्मि ने ये बात इस तरह कही थी कि दादाजी को बिल्कुल भी घबराहट या चिंता ना हो। तभी दादाजी बोले थे, यहीं कर को था वहाँ? हाँ, वो शायद वीर के साथ था, वीर उसके साथ खेल रहा था। ये सुनकर रश्मि का चेहरा थोड़ा सा चिंता से भर गया, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस ली और आसपास वीर को देखने लगी। तभी बाहर से कुछ ताज़ी सब्जियां लेकर वीर गुनगुनाते हुए अंदर आया। अब तो रश्मि के माथे की परेशानी पूरी तरह से झलकने लगी थी, क्योंकि उसकी गोद में भी अंश नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वसुंधरा की गोद में अंश होगा, लेकिन वीर के साथ साथ वसुंधरा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी। ये देखते ही रश्मि पूरी तरह से घबरा गई, उसने जोर से चीख मार दी। अब रश्मि की चीख सुनकर सारी लड़कियां, स्पेशली आस्था, तुरंत दौड़कर उसके आसपास जमा हो गई थीं। सभी घबराते हुए पूछने लगी थीं, रश्मि दी, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, बोलो ना। आस्था के हाथ में अभी भी चाकू था और उसी हालत में वो रश्मि के पास आ गई थी, क्योंकि इस जल्दीबाजी में उसके हाथ पैर फूल गए थे। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंची थी। जैसे ही इस तरह से रश्मि से सवाल किए जा रहे थे, रश्मि की चीख सुनकर आकाश और सुमित बच्चों को लेकर तुरंत नीचे आ गए थे। साथ साथ अरमान तो पहले से ही वहां मौजूद था। इतना ही नहीं, अबीर और अविनाश दोनों में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी और दोनों किसी न किसी मामले को लेकर डिस्कस करते रहते थे। वे दोनों भी एक साथ वहां आ गए थे। लेकिन एक बार फिर से रश्मि ने भारी नजरों से सब लोगों की ओर देखा। वहीं अरमान तो नासमझी से रश्मि की ओर देखने लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त रश्मि ने हिचकियां लेते हुए बोला था, आस्था, हमारा अंश कहाँ है? जैसे ही हिचकियां लेते हुए रश्मि ने आस्था से ये कहा, आस्था भी अब पूरी तरह से घबराहट से भर गई थी। वो अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगी, लेकिन अंश तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, आज तो लास्ट टाइम बहुत अच्छे से आस्था ने अंश को तैयार किया था और खुद उसे नीचे लेकर आई थी। इनफैक्ट दादाजी ने उसे तुरंत ही बोतल से दूध पिला दिया था और उसके बाद वो झूले में सो गया था। फिर आस्था जब किचन में गई थी, तब वीर उसे खेलने लगा था, लेकिन कुछ सब्जी लेने के लिए वीर को बाहर भेज दिया गया था, इसीलिए वो अंश को वहीं छोड़कर चला गया था। दादाजी ने भी लास्ट टाइम अंश को वीर के साथ ही देखा था। अब जैसे जैसे ये सारी बातें आपस में खुलने लगी, आस्था की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे कांपसा महसूस होने लगा था। वहीं अरमान का चेहरा तो ऐसा हो गया था मानो किसी ने उसकी दिल की धड़कन ही छीन ली हो। वो भी आंखों में घबराहट लिए चारों तरफ देखने लगा था, लेकिन कहीं भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। आस्था के हाथ से चाकू पूरी तरह से छूट गया था। वो रोते हुए बोली थी, हमारा बच्चा कहाँ है? वहीं आहान ने गुस्से में आकर वीर का गिरेबान पकड़ लिया था और बोला था, कहाँ है मेरा बच्चा, बोल, जवाब दे, लास्ट टाइम तू ही उसके साथ था, बता, कहाँ है मेरा अंश?
वहीं वीर पूरी तरह से घबरा गया था और वसुंधरा वीर को बचाने की कोशिश करने लगी थी। वो बोली थी, हम पर यकीन करो, हम दोनों सिर्फ बाहर सब्जी लेने गए थे, हमें नहीं पता अंश बेटा कहाँ गया, हमने उसे लास्ट टाइम झूले में ही देखा था। वीर भी घबराते हुए बोला था, लास्ट टाइम वो झूले में ही था, अभी सिर्फ 10 मिनट की ही बात है, मैं बाहर ठेले से सब्जी लेने गया था, मैंने बाहर किसी को जाते हुए भी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वीर ने ये कहा, आहनान ने गुस्से में आकर उसे खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। वो चिल्लाकर बोला था, बता कहाँ है, तूने कुछ किया है उसके साथ, बोल, जवाब दे। वहीं रश्मि तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। अंश को कहीं ना पाकर अरमान खा जाने वाली नजरों से लगातार चारों तरफ देख रहा था। अबीर, अविनाश और सारी लड़कियां पूरी तरह से परेशानी में डूब गई थीं। कहीं पर भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। वीर बार बार कह रहा था कि उसने बाहर किसी को निकलते हुए नहीं देखा। सुमित और आकाश ने चारों तरफ सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी। तभी अचानक आस्था के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। उसे अंश का एहसास होने लगा। वो तुरंत उस दिशा की ओर देखने लगी और थोड़ी दौड़ लगाकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अंश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अचानक आस्था घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो चिल्लाकर बोली थी, मेरा अंश चला गया, किसी ने फिर से उसे अगवा कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बार मैं जी ही नहीं पाऊंगी, अपने अंश के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगी। ये कहते हुए आस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं अरमान बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि इस सिचुएशन में क्या करे। लेकिन तभी अचानक अंश की रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। आस्था की चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर अंश, जो सोया हुआ था, नींद से जाग गया था। वहीं उसे किडनैप करने वाले ने सोचा था कि अंश तो सोया हुआ है और सब लोग आस्था को संभालने में लगे हुए हैं, तो यही मौका है चुपचाप उसे लेकर निकलने का। लेकिन जैसे ही अंश के रोने की आवाज तेज होने लगी, वो आदमी घबरा गया और तुरंत उसका मुंह बंद करने लगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके घर का पुराना नौकर राजेश था, जो कभी कोमा में था और जिसे ध्रुव ने घर से निकलवाकर अस्पताल में एडमिट करवाया था। सबको लगा था कि अब वो घर के लिए कोई खतरा नहीं है। वैसे भी सब लोगों ने यही समझा था कि राजेश ने जो कुछ किया था वो सिर्फ ब्लैक डेविल के कहने पर किया था, ताकि उसके परिवार की जान बच सके। लेकिन एक बार फिर से राजेश को सही सलामत वहां देखकर आस्था जोर से चीख पड़ी थी। वहीं अब राजेश के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन उसने तुरंत अंश को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला था, अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की तो यही कि यही मैं अंश सिंघानिया की जान ले लूंगा, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।